नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही अहम पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इस पर बात करेंगे
जी।
और इसमें भी एक खास अध्याय है, जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय।
जी, ये अध्याय उनके जीवन के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ को दर्शाता है।
हाँ, मतलब ये पूज्य गुरुदेव का अपना अनुभव है, 15 साल की उम्र से शुरू होता है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सौभाग्य का सूर्योदय उनके अनुसार कैसे हुआ।
बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं।
तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उनका जीवन, हाँ, आध्यात्मिक चुकाव तो था ही।
हाँ, जैसे आपने बताया, 8 साल की उम्र में महामना मालवीय जी से गायत्री दीक्षा मिल गई थी।
सही, संस्कृत व्याकरण का अध्ययन भी किया और पिताजी के साथ भागवत कथाओं में भी जाते थे।
और उनका विवाह भी हो चुका था। अपनी पत्नी के बारे में वो लिखते हैं कि वो बड़ी अनुशासन प्रिय, परिश्रमी और सहयोगी थी।
और हाँ, मालवीय जी ने जो निर्देश दिया था, गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 5 माला रोज, वो भी वो नियम से कर रहे थे।
जी।
फिर आता है वो खास दिन, 15 साल की उम्र, वसंत पर्व का दिन था।
हाँ,
ब्रह्म मुहूर्त का समय, मतलब सुबह सुबह जब वो उपासना कर रहे थे तो उनकी कोठरी में अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली।
अच्छा।
तो स्वाभाविक है, पहले तो उन्हें लगा कि भाई ये कोई मेरी आंखों का धोखा है, कोई भ्रम है। फिर थोड़ा सा डर और हैरानी भी हुई।
हाँ बिल्कुल।
और फिर उसी रोशनी के पुंज के बीच में से, पूज्य गुरुदेव बताते, एक योगी का सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ।
सूक्ष्म शरीर
मतलब?
हाँ, मतलब भौतिक शरीर नहीं, एक तरह का ऊर्जा शरीर या आत्मिक स्वरूप कह सकते हैं। और उस योगी ने पूज्य गुरुदेव से कहा कि वो उनके साथ पिछले 3 जन्मों से हैं और अब उनका मार्गदर्शन करने आए हैं।
3 जन्मों से? पर पूज्य गुरुदेव को तो कुछ याद नहीं होगा पिछले जन्मों का।
बिल्कुल नहीं था, इसीलिए तो उनके मन में शंका हुई, थोड़ा भय भी लगा, ये तो स्वाभाविक ही था ना।
हाँ बिल्कुल।
फिर क्या हुआ?
फिर योगी की कृपा हुई और पूज्य गुरुदेव को एक खास अवस्था का अनुभव हुआ, जैसे कोई योग निद्रा हो या जागृत समाधि।
अच्छा।
उसमें क्या देखा?
उसी अवस्था में उन्हें अपने पिछले 3 जन्म बिल्कुल साफ साफ दिखे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो।
कमाल है। कौन कौन से जन्म?
उन्होंने देखा कि एक जन्म में वो संत कबीर थे, अपनी पत्नी के साथ काशी में रहते थे और जो समाज में पाखंड था उसका खंडन करते थे, सरल अध्यात्म की बात करते थे।
संत कबीर।
अच्छा।
और दूसरा?
दूसरे जन्म में वो समर्थ गुरु रामदास थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु, उनके जरिए राष्ट्र को संगठित कर रहे थे, व्यायाम शालाएं, सत्संग भवन बनवा रहे थे।
समर्थ रामदास।
और तीसरा जन्म?
तीसरा था रामकृष्ण परमहंस का। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को तैयार किया, भारतीय संस्कृति का एक तरह से नव जागरण किया।
अद्भुत।
मतलब कबीर, रामदास, रामकृष्ण परमहंस,
ये सब स्मृतियां उनको योगी ने दिखाई। जी। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि योगी ने पूज्य गुरुदेव को ही क्यों चुना माध्यम के तौर पर।
हाँ, ये सवाल तो मन में आता है।
योगी ने समझाया कि देखो, मैं तो सूक्ष्म शरीर में हूँ, इस रूप में दुनिया के बड़े काम, स्थूल काम नहीं किए जा सकते। लोक कल्याण के लिए और खासकर उस विषम समय में एक स्थूल शरीर वाले माध्यम की जरूरत थी।
अच्छा।
और उन्होंने ये भी साफ किया कि जो देवात्माएं होती हैं, वो किसी को माध्यम बनाने से पहले खूब परखती हैं, अपनी शक्ति ऐसे ही व्यर्थ नहीं करती।
मतलब एक तरह की परीक्षा होती है।
हाँ बिल्कुल, पात्रता देखी जाती है। और ये जो पिछले जन्मों की याद दिलाई गई, ये पूज्य गुरुदेव की पात्रता को साबित करने के लिए ही थी।
ये बहुत गहरा विचार है।
और एक और दिलचस्प बात देखिए, योगी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि पूज्य गुरुदेव विवाहित हैं।
अच्छा।
आम तौर पर तो अध्यात्म में वैराग्य पर जोर होता है। हाँ, पर योगी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्त ऋषियों का उदाहरण दिया, कहा कि गृहस्थ आश्रम लोक सेवा के लिए, खासकर गुरुकुल परंपरा जैसे कामों के लिए ज्यादा सही है। उसमें माता और पिता यानी स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका चाहिए होती है।
ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है।
और ये भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी उन्हें वही सहयोगी पत्नी मिलेंगी।
इस पूरे अनुभव के बाद तो पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया होगा।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने उस प्रकाश पुंज वाले योगी को ही अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक, ईश्वर के समान मान लिया, पूरा समर्पण कर दिया। और उन्हें ये समझ आया कि जो सिद्ध पुरुषों की कृपा होती है या उनकी शक्तियाँ होती हैं, वो किसी के व्यक्तिगत फायदे के लिए या चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती।
तो फिर किस लिए होती?
लोक कल्याण के लिए, समाज में अच्छी आदतों, अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए, सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए।
उन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद, समर्थ शिवाजी जैसे गुरु शिष्य संबंधों का महत्व समझा और ये भी जाना कि जो सिर्फ चमत्कार दिखाते हैं वो बाजीगर जैसे हैं और जो सच्चे लोकसेवी सिद्ध हैं उनमें क्या फर्क है।
सही कहा। अच्छा, तो फिर उस योगी सत्ता ने उन्हें आगे के लिए कुछ राह भी दिखाई, कोई योजना?
जी हाँ, उसी दिन उनके पूरे भावी जीवन की एक रूपरेखा, एक कार्य योजना तय कर दी गई। कुछ खास निर्देश दिए।
क्या निर्देश थे?
पहला तो ये कि अगले 24 सालों में 24 गायत्री महापुरुष चरण करने हैं, मतलब गायत्री मंत्र के बहुत गहन लंबे अनुष्ठान।
24 साल 24 महापुरुष चरण,
ठीक है।
और
एक अखंड घृतदीप स्थापित करने को कहा, यानी एक ऐसा दिया जो लगातार घी से जलता रहे, साधना की निरंतरता का प्रतीक।
अखंड दीप, ठीक है।
मार्गदर्शन के लिए समय समय पर हिमालय भी जाना होगा, कुल 4 बार।
4 बार हिमालय गमन। और सबसे जरूरी बात, उपासना यानी साधना और लोक मंगल यानी लोक सेवा, इन दोनों को साथ साथ चलाना है। और उस समय लोक सेवा में स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी भी शामिल थी,
यानी साधना और सेवा का संतुलन।
बिल्कुल, यही उनके जीवन का आधार बना। फिर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि उन्होंने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई तर्क वितर्क किए, पूरी श्रद्धा से इन निर्देशों को माना और उसी मार्गदर्शन पर चलते हुए उनका जीवन आगे बढ़ा और सफल हुआ।
तो ये थी वो कहानी, पूज्य गुरुदेव के अपने शब्दों में उनके जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय, वो निर्णायक पल जहां से उनके अनुसार उनकी इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा और लोक सेवा का महान काम शुरू हुआ।
जी, समर्पण और मार्गदर्शन की एक अद्भुत कहानी है ये।
बिल्कुल।
और ये अनुभव हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि किसी इंसान के जीवन में इतना गहरा आध्यात्मिक अनुभव आना, एक साफ मिशन मिलना, इसका उस व्यक्ति पर और फिर पूरे समाज पर कितना असर पड़ सकता है।
हाँ, ये बात तो है।
जहाँ समर्पण और मार्गदर्शन इतने अहम है, उनको समझने से जीवन में उद्देश्य और प्रतिबद्धता के बारे में हमारी अपनी सोच पर क्या असर पड़ सकता है।